लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 12 जून को पौत्र त्रित्वा के महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात, शुभ रविवार। आज पौत्र त्रित्वा का महापर्व, धर्म विधि के सुसमाचार पाठ में यीशु और दो ईश्वरीय व्यक्तियों को प्रस्तुत करते हैं, पिता और पौत्र आत्मा। वे पौत्र आत्मा के बारे बोलते हैं, वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वह जो सुनेगा वही कहेगा। उसके बाद पिता के बारे बोलते हैं, जो कुछ पिता का है वह मेरा है। संत पापा ने पौत्र आत्मा के कार्य पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया, जो बोलता है किंतु अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, वह यीशु की घोषणा करता एवं पिता को प्रकट करता है, और पिता जिनका सब कुछ पर अधिकार है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, पुत्र को सब कुछ प्रदान करते हैं। संत पापा ने विश्वासों से कहा, और अब हम अपने आप पर गौर करें, हम क्या बात करते हैं और किन चीजों को अपने पास रखते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि अपने लिए अच्छी बातें हों। कई बार हम सिर्फ खुद के बारे बोलते और हम क्या करते हैं उसी की चर्चा करते हैं। पौत्र आत्मा की तुलना में हम कितने अलग हैं, जो सिर्फ दूसरों की घोषणा करता। हम जो कुछ अपने पास रखते हैं उसके लिए कितने सतर्क होते, और हमारे लिए इसे बांटना कितना कठिन होता है उन लोगों के साथ भी जिनके पास आवश्यकता की चीजें नहीं होती। शब्दों में यह आसान है, किंतु कार्य में परिणत करना बहुत कठिन। यही कारण है कि पौत्र त्रित्वा का महापर्व केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के रास्ते में एक क्रांति है। ईश्वर में हर एक व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं,
Oggi possiamo chiederci se la nostra vita riflette il Dio in cui crediamo.
कि क्या हमारा जीवन उस ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। मैं जो पिता, पुत्र और पौत्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, क्या मैं सचमुच मानता हूँ कि क्या जीने के लिए मुझे दूसरों की आवश्यकता है? मुझे अपने आप को दूसरों को देना है। क्या मैं इससे केवल अपने शब्दों से व्यक्त करता, अथवा क्या मैं इससे अपने जीवन से पुष्ट करता हूँ? संत पापा ने विश्वासों को संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर जो एक जन में तीन जन हैं, उन्हें प्रकट किया जाना है, शब्दों के साथ और कार्यों के साथ भी। ईश्वर जो हमारे जीवन के मालिक हैं, उन्हें किताबों द्वारा अधिक नहीं बांटा जाना चाहिए, किंतु हमारे जीवन के साक्ष्य द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए, जैसा कि सुसमाचार लेखक संत यूहन लिखते हैं, वे प्रेम हैं, अपने आप को प्रेम द्वारा प्रकट करते हैं। हम उन लोगों की याद करें जो भले, उदार और विनम्र हैं, और जिनसे हमने मुलाकात की है, उनके सोचने एवं कार्य करने के तरीके की याद करें। हम ईश्वर के प्रेम का छोटा झलक पा सकते हैं। प्रेम करने का अर्थ क्या है? हम उनके लिए सिर्फ अच्छा होने और अच्छा करने की कामना नहीं कर सकते, बल्कि सर्वप्रथम उनका स्वागत करना है, दूसरों के लिए जगह बनाना है और अन्यों के लिए स्थान देना है। इससे अधिक अच्छी तरह समझने के लिए ईश्वरीय व्यक्तियों के नाम पर चिंतन करें, जिनकी घोषणा हम तब तब करते हैं जब जब क्रूस का चिन्ह बनाते। हर नाम में दूसरे की उपस्थिति है, उदाहरण के लिए पिता पुत्र के बिना पिता नहीं होते, उसी तरह पुत्र अकेला पुत्र नहीं हो सकता, बल्कि पिता का पुत्र है और पौत्र आत्मा पिता एवं पुत्र की आत्मा है। संक्षेप में पौत्र त्रित्व हमें सिखलाते हैं कि हम दूसरों के बिना कभी नहीं रह सकते। हम कोई टापू नहीं है, हम दुनिया में ईश्वर की छवि को जीने के लिए हैं। हमें दूसरों की आवश्यकता है और दूसरों को हमारी आवश्यकता। अतः हम अपने आप से यह सवाल पूछें, अपने दैनिक जीवन में क्या मैं पौत्र त्रित्व का प्रतिबिंब हूँ? मैं जो क्रूस का चिन्ह बनाता, क्या वह अपने आप में केवल एक चिन्ह मात्र है, अथवा क्या यह मेरे बोलने, मुलाकात करने, जवाब देने, न्याय करने और क्षमा करने के तरीके को प्रभावित करता है? तत्पश्चात संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, माता मरियम पिता की पुत्री, पुत्र की माता और पौत्र आत्मा की दुल्हन, हमें ईश्वरीय प्रेम के रहस्य का अपने जीवन में स्वागत करने एवं उसका साक्ष्य देने में मदद दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने DR कोंगो और दक्षिणी सूडान में होने वाली अपनी प्रेरित यात्रा को स्थगित करने के लिए माफी मांगी और कहा कि जितनी जल्दी संभव हो वे वहां जाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कोंगो एवं दक्षिणी सूडान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा,
Carissimi, con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi.
प्यारे मित्रों, बड़े खेद के साथ पांव की समस्या के कारण मुझे आपके देशों में अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है जो जुलाई में होने वाली थी। इस यात्रा को स्थगित करते हुए मैं सचमुच खेद महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की सहायता एवं चिकित्सा देखभाल के द्वारा मैं जितनी जल्दी संभव हो सके आप लोगों के पास आ सकूं। तत्पश्चात संत पापा ने पोलैंड की 10 नए धन्यों की याद करते हुए कहा, कल पोलैंड के ब्रेस्लाविया में सिस्टर पास्कालीना जोन और 9 शहीद धर्म बहनों की धन्य घोषणा हुई जो संत एलिजाबेथ की धर्म बहनों के धर्म समाज की सदस्य थीं। वे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ख्रिस्त विश्वास के प्रति घृणा के कारण मार डाली गईं। ये 10 धर्म बहनें खतरे को जानते हुए भी उन बुजुर्गों एवं बीमार लोगों के साथ रहीं जिनकी वे देखभाल करती थीं। ख्रिस्त के प्रति निष्ठा का उनका उदाहरण हम सभी को मदद दे, खासकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अत्याचार से पीड़ित ख्रिस्तियों को, ताकि वे साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सकें। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्यों को सम्मानित किया। संत पापा ने बाल मजदूरी दिवस की भी याद करते हुए कहा, आज विश्व बाल मजदूरी दिवस है। आइए हम इस पीड़ा को दूर करने के लिए एक साथ प्रयास करें ताकि कोई भी बालक या बालिका अपने मौलिक अधिकार से वंचित ना हो एवं काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। काम के लिए शोषित नाबालिगों का मामला एक गंभीर सच्चाई है जो हम सभी को चुनौती देता है। इसके बाद संत पापा ने यूक्रेन में पीड़ित लोगों की याद की। उन्होंने कहा, युद्ध से प्रभावित यूक्रेन के लोगों की याद हमेशा मेरे दिल में है। समय बीतने से हमारा दर्द कम नहीं होता और उन पीड़ित लोगों के प्रति हमारी चिंता कम नहीं होती। कृपया इस संकट में सच्चाई के आदि ना हो जाएं। हम इसे हमेशा अपने दिल में रखें और शांति के लिए प्रार्थना करें। तब संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
यीशु का प्यार दे चलो। वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 13 जून को वाटिकन में चिली की राजदूत श्रीमती पेट्रिसिया अराया गुटेरेस का स्वागत किया। नई राजदूत श्रीमती पेट्रिसिया अराया ने संत पापा को अपना प्रत्यय पत्र सौंपा, जिसे संत पापा ने स्वीकार किया। श्रीमती पेट्रिसिया का जन्म 5 नवंबर 1968 को चिली के संतियागो में हुआ। वे शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने संतियागो डी चिली महानगर के शैक्षिक विज्ञान विश्वविद्यालय से 1992 में इतिहास और भूगोल में स्नातकोत्तर प्राप्त किया। उन्होंने 1996 में चिली के एंड्रेज बेल्लो राजनयिक अकादमी में अध्ययन किया और उन्नत अध्ययन संस्थान से 2010 में विदेश नीति में स्नातकोत्तर प्राप्त किया। उन्होंने देश विदेशों में राजनयिक पदों पर अपनी सेवा दी। 2020 से अब तक वे इटली में दूतावास के निदेशक, FAO, PMA, IFAD के निदेशक के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। और संत पापा फ्रांसिस अपने घुटने के दर्द के कारण सामूहिक पवित्र धर्म विधियों का अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं। वे पावन शरीर और रक्त का मिसा समारोह का अनुष्ठान और पवित्र यूकरिस्त की शोभा यात्रा में भाग नहीं ले पाएंगे। गुरुवार को पावन शरीर और रक्त के त्योहार से पहले वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा सोमवार को यह बयान जारी किया गया। संत जॉन लातेरन महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा फ्रांसिस ने कई वर्षों तक परम पवित्र शरीर और रक्त महोत्सव की परंपरा को जारी रखा और रोम के संत मरिया मेजर महागिरजाघर तक विश्वासियों के साथ पवित्र साक्रामेंट की शोभा यात्रा की अगुवाई की। बाद के वर्षों में संत पापा ने रोम के आसपास के विभिन्न पल्लियों और क्षेत्रों में पवित्र मिसा समारोह और जुलूस निकालकर परंपरा को साझा करने का निर्णय लिया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से संक्रमण से बचाव के लिए जुलूस को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था और संत पेत्रुस महागिरजाघर में बहुत सीमित विश्वासियों के साथ पवित्र मिसा समारोह मनाया गया। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अफ्रीका के मिशनरियों के धर्म संघ की आम सभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने परिचय भाषण के लिए सुपीरियर फादर जनरल को धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, दुर्भाग्य से बड़े अफसोस के साथ मुझे कोंगो और दक्षिण सूडान की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। वास्तव में मेरी उम्र में किसी मिशन पर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं और आपके उदाहरण ने मुझे साहस दिया है और मुझे विश्वास है कि मैं इन लोगों के साथ मिलने में सक्षम होऊंगा, जिन्हें मैं अपने दिल में रखता हूं। संत पापा ने कहा कि आम सभा के लिए उन्होंने भविष्य सूचक गवाह के रूप में मिशन पर कार्य करना चुना है। संत पापा ने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप इन दिनों कृतज्ञता के साथ और आशा के साथ जी रहे हैं, वह बहुत अच्छा है। कृतज्ञता के साथ पीछे मुड़कर देखना अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की निशानी है। यह व्यवस्था विवरण मनोवृत्ति है जिसे ईश्वर ने अपने लोगों को सिखाया। उस यात्रा की साभार स्मृति को विकसित करें और यही कृतज्ञ आशा की लौ को खिलने में मदद करती है। एक समुदाय जो ईश्वर और अपने भाइयों को धन्यवाद कहना जानता है और जिसमें एक दूसरे को पुनर्जीवित प्रभु में आशा करने के लिए मदद करता है, वह समुदाय बुलाए गए लोगों को आकर्षित और समर्थन करता है। आप कृतज्ञता और आशा में आगे बढ़ें। उधर संत प्रकरण के लिए गठित धर्म संघ के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो ने शनिवार को पोलैंड के वोक्लाव में पवित्र मिसा के दौरान 10 पोलैंड की धर्म बहनों को धन्य घोषित करते हुए सम्मानित किया। संत एलिजाबेथ की 10 धर्म बहनें बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों की देखभाल एवं अपनी पवित्रता की शपथ और अपने बुलाहट के प्रति वफादार रहीं। 1945 में लाल सेना के सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। कार्डिनल सेमेरारो ने अपने प्रवचन में कहा, इन धर्म बहनों का पूरा जीवन बीमारों, छोटे बच्चों, गरीबों और सबसे जरूरतमंदों की सेवा में स्वयं का एक सच्चा उपहार था। उनका निस्वार्थ प्रेम इस हद तक अडिग था कि 1944-45 के अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे आने वाले लाल सेना की क्रूरता और पूर्वी एशिया के निवासियों के खिलाफ सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरों के बावजूद अपना स्थान नहीं छोड़ेंगी। कार्डिनल सेमेरारो ने जोर देकर कहा कि संत एलिजाबेथ धर्म संघ की 10 धर्म बहनों की शहादत उस हिंसा, क्रूरता और घृणा को याद कराती है जो अब यूक्रेन में हो रही है। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के लिए चिंता के संकेत शांति का निर्माण करते हैं और युद्ध की स्थिति में होने वाली हिंसा की प्रतिक्रिया है। चल रहे युद्ध के सामने कार्डिनल ने नए धन्यों की मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आज हम यूक्रेन के लोगों, प्रवासियों और शांति के लिए विशेष रूप से उन्हें समर्पित करते हैं। उधर ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को स्थानांतरित करने के लिए रवांडा के लिए अपनी पहली उड़ान को अधिकृत किया है। 31 अवांछित प्रवासियों को ले जाने वाला विमान अगले मंगलवार को रवाना होने वाला है, लेकिन एक न्यायाधीश ने मानवाधिकार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और स्थानांतरण के लिए नियत कुछ व्यक्तिगत प्रवासियों द्वारा दायर एक अपील को बरकरार रखा। लंदन में कोर्ट ऑफ अपील के समक्ष सुनवाई सोमवार को होगी। विवादास्पद पहल हाल ही में बोरिस जॉनसन की सरकार द्वारा इस उम्मीद में शुरू की गई थी कि यह एक निवारक के रूप में काम करेगी और अंग्रेजी चैनल को डोंगियों या अस्थायी नावों से पार करके ब्रिटिश तटों पर उतरने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या को सीमित करेगी। कैथोलिक कलीसिया ने इस पहल की निंदा की है। यूक्रेन के जेस्विट रिफ्यूजी सर्विस JRS ने इस योजना की निंदा की, इसे मानवता और गरिमा के लिए एक गंभीर अवहेलना कहा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।